दूध और बदबनी शुरू हो जाती है। कराची मुख्तलिफ नस्ल और जबान के लोगों के दरमियान इख्तलाफ का मरकज होने के साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान रकाबत का मैदान भी बना हुआ है। चुनांचे तशद्दुद की मौजूदा लहर के ताल्लुक से भी वाज़े तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी का नाम लिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार यावर बुखारी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। यावर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
बुखारी साहब, कराची में तशद्दुद की नई लहर कैसे शुरू हुई?
जी कराची चूंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी का जो पाकिस्तान के इक्तसादियात का एक हब है और उसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो पाकिस्तान में ये तशद्दुद की लहर जो है ये आज इसे नई नहीं कहा जाता, ये बड़ी कदीमी लहरें हैं जो कभी इसमें मद्दोजजर आता रहता है, कभी ये ऊपर चली जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये वहाँ पर असल में जो प्लेयर्स हैं, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उनको सोचना है कि कराची में अमन कैसे कायम किया जा सकता है। अगरचे मौजूदा हुकूमत जो है ये कोशिश करती है, और वहाँ के जो दोनों मेजर प्लेयर जिनको आजकल जो मेजर प्लेयर्स बन चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM और अवामी नेशनल पार्टी, ये दोनों हुकूमती इत्तेहाद में भी शामिल हैं, और कराची में भी ये दोनों जमातें जो हैं इनकी आपस में एक किस्म की कश्मकश और टसल है। अगरचे अवामी नेशनल पार्टी को कराची में कराची से पार्लियामेंट में कोई ऐसी जो है वो नशिस्त नहीं मिली आम इंतखाबात में, अभी वहाँ से जो उनके ANP के जो वो लीडर हैं शाही सैयद जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं वहाँ से, वो भी वो जाहिर है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो बराह रास्त आवाम से तो नहीं होते हैं, वो चूंकि मुंतखब नुमाइंदों ने मुंतखब करने होते हैं और फार्मूला के तहत होते हैं, तो वहाँ से अभी वो शाही सैयद जो हैं वो पार्लियामान में पहुँचे हैं। मगर नो डाउट वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ये एक बहुत बड़ी फोर्स है कराची के हवाले से, और वहाँ से उनको मेजर नशिस्तें भी मिलती हैं पार्लियामेंट में भी, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। तो अब वहाँ का अमन व अमान जो है इन्हीं जो पार्टी हैं, मैं तो वहाँ पर चार मेजर पार्टियाँ गिनता हूँ कि MQM है, ANP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि जमात इस्लामी भी वहाँ पर कराची की मेयरशिप की उम्मीदवार है और कराची की मेयरशिप कर चुकी है, और कराची के जो है वहाँ पर उनका होल्ड रहा है किसी ज़माने में। और अब जो एक नई फोर्स जो उभरी है वो सुन्नी तहरीक जो है वो उठी है। तो अब ये पांच मेजर प्लेयर्स हैं वहाँ कराची में जिन्होंने ये सोचना है कि कराची में अमन व अमान किस तरीके से कायम किया जा सकता है। कराची की ये जो लहर है ये अब ये चूंकि आइंदा इंतखाबात आ रहे हैं पाकिस्तान में, और उन इंतखाबात में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कराची में ये जो एक बदअमनी की लहर जो नई उठी हुई है ये उसी इंतखाबात की पेशबीनी के तौर पर और जो सफ़ें दुरुस्त कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज उस हवाले से ये लहर आई हुई है। और ये लहर जो है ये अब मैं ये समझता हूँ कि ये थमने का नाम नहीं लेगी, ये ता वक्ते के आइंदा आम इंतखाबात नहीं हो जाते और वहाँ पर जो है ये जो इंतखाबात में भी काफ़ी वहाँ पर खतरात हो सकते हैं कि वहाँ कुछ तो जो है ना खून खराबा हो वहाँ पे। तो ये अब चूंकि आज वो हुआ इजलास भी हुआ पॉलिटिकल पार्टीज का गवर्नर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें भी अगरचे ये तो बज़ाहिर ये इंडिया दिया गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुत्तफिक हो गई हैं कि कराची में अमन व अमान कायम किया जाएगा, लेकिन दर हकीकत ये ऐसा नहीं है। वहाँ पर इक्तदार की, वहाँ पर पावर की, वहाँ पर ताकत की कश्मकश जो है वो जारी है, और तमाम पार्टीज ये चाहती हैं कि वहाँ पर जो है ना उनका होल्ड हो सके और वो कराची से अपने आप को मनवा सके कि कराची में वो लोग काम कर रहे हैं। चूंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो मासिस से है वहाँ पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी लियारी का इलाका और एक दो और इलाके जो है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, और तीसरी जो मेजर प्लेयर है वहाँ पर जमात इस्लामी, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ये बज़ाहिर सामने जो आ गए हैं वो अवामी नेशनल पार्टी और मुतहदा कौमी मूवमेंट आपस में बज़ाहिर आमने सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये जमात इस्लामी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जमात इस्लामी खामोशी से वहाँ पर जो अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रही है, और उधर सुन्नी इत्तेहाद भी एक उभरती हुई नई कुव्वत आ रही है जो अपने आप को पॉलिटिकल धारे में ला रही हैं। तो ये सारी सफ़ों की दुरुस्तगी और ये सारा निज़ाम जो है ये अब नए इंतखाबात तक चलेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कराची में जो है वो बैरूनी कुव्वतों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो है इंतज़ामी तौर पर अगरचे इन्होंने कराची को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, और मौजूदा हुकूमत जो है ये मैं समझता हूँ कि चूँकि अभी तक तो अफामो तफहीम के साथ चल रही है, लेकिन इन्होंने भी आइंदा इलेक्शन में जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पाकिस्तान की बड़ी जमात क्लेम करती है, उन्होंने भी इंतखाबात में जाना है, और उन्होंने जो दीगर सियासी पार्टियों के साथ मुफाहमत का जो एक एक माहौल पैदा किया है और एक पॉलिसी जो अपनाई है उसके तहत उन्होंने तमाम पार्टीज़ को आइंदा इंतखाबात के लिए मुतफिका तौर पर लेके आना है कि तमाम पार्टीज़ जो मेजर पार्टीज़ हैं वो इंतखाबात में आएँ। तो एक जो एक एक बहुत अहम बात मैं बताना चाहूँगा वो ये कि वहाँ पर हल्का बंदियाँ नहीं होना है, नई हल्का बंदियाँ जो होनी हैं उनके लिए भी, चूँकि वहाँ पर MQM जो है वो बड़ी जमात है, तो उसको तहफ़ुज़ात हैं कि वहाँ पर हल्का बंदियाँ की जा रही हैं। वहाँ पर चूँकि बड़ी तादाद में सिंधियों को लाकर बसाया जा रहा है, और जो कराची के सराउंडिंग्स में जो देहाती एरियाज हैं वहाँ पर सिंधी बैठे हुए हैं, तो हल्का बंदियों में कुछ इस तरह का ये निज़ाम बनाने को जा रहे हैं कि जिसके तहत कराची इनके हिस्से बखरे किए जा सकें। तो उसको रोकने के लिए MQM जो है वो ज़ाहिर है वो अपना अपने आपको बचाने के लिए और आवाम जो उनके साथ है उनको काफ़ी उनकी आवाम की जो हिमायत हासिल है तो वो नहीं चाहती कि नई हल्का बंदियाँ हों, पुरानी हल्का बंदियों पे नए इंतखाबात हों। तो ये सारा एक बड़ा ये कम्प्लेक्स किस्म का एक गुंजलदार ये सारा कराची का जो है वो माहौल है, और कराची में अगर कोई हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि वो वहाँ पर अमन अमान कायम किया जा सके तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नया इमरानियाती और मुआशरती निज़ाम जो है वो उनको बाहम मिल बैठ कर तय करना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया,
नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में असलहा की भरमार है, बहुत ज़्यादा असलहा है, जो हर जमात जो है वो मुसल्ला है, हर जमात के मुसल्ला विंग्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक नया इमरानियाती उसूल पॉलिसी जो है वजह करनी होगी ताकि कराची के लोगों को अमनो अमान।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब।
किस हद तक नई पॉलिसी,
हम आपकी तरफ आएंगे दोबारा, हमारी गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी। और इस वक्त चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां बर्रे सगीर के मुमताज दानिश्वर डॉक्टर मखसूस सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सिद्दीकी साहब, कराची में बदमनी की जो ताजा लहर है उसके बारे में आपकी राय क्या है?
जैसा अभी आपने सुना कि ये जो है इसकी उसको एनालाइज करना जो इतना आसान नहीं है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और उसको हम सिर्फ इस बात ये कहें कि जो बड़ी दो पार्टीज हैं ANP है या MQM है उसमें आपस में इख्तलाफ है या जमात इस्लामी उसमें शामिल है, इससे ये समझ में नहीं आता कि पिछले 6-7 माह से, बल्कि मैं समझता हूँ तकरीबन 1 साल होने को आ गया कि बदअमनी के लहर और जिसको कहते हैं टारगेट किलिंग, टिट फॉर टैट किलिंग, जिसमें तकरीबन रोजाना 9 से औसतन 9-10 लोग जो हैं हलाक हुए हैं, अगर आप उसको इसी को जोड़ लें तो तादाद हजारों में पहुंच जाती है और उसमें बहुत सारे मासूम भी मारे गए हैं। इसको मैं समझता हूँ कि हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कराची में बदअमनी फैला के किसका किन पार्टीज का, किन लोगों का, किन ग्रुप्स का को को फायदा हो सकता है और किन को नुकसान हो सकता है। इसमें देखिए अंदरूनी भी फैक्टर शामिल हैं और मैं समझता हूँ बैरूनी बहुत भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बहुत मुमकिन है मेरे हिसाब से कि अमरीका, यूरोप और खलीज के साथ साथ हिंदुस्तान, ये इन इन तीनों, अब इनको अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं अर्ज करूँगा कि सबसे पहले जो जो खलीज की जो बात आती है, कराची देखिए तकरीबन पाकिस्तान का 60 से 70% जो आमदनी होती है मुल्क की वो कराची से होती है। कराची जो है इंडस्ट्रियल और कॉमर्स और बैंकिंग का मरकज है पाकिस्तान का। अगर कराची में बदअमनी होगी तो पूरे पाकिस्तान में उसका असर होगा। और एक चीज, और हुकूमत को भी हम इससे अलहदा नहीं कर सकते हुकूमत की पॉलिसीज को, क्योंकि ये जो अगर कराची में बदनामी और मसले होंगे तो लोगों की जो नजरें हैं कराची भी होंगी और जो बाकी मुल्क में जो भी कुछ हो रहा होगा उसके ऊपर वो जाहिर इतनी कड़ी नजर नहीं रख सकते। तो एक ही सिलसिला, और एक और उसमें जो एक फैक्टर है वो ये है कि शिया और सुन्नी मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, यानी इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। आए दिन जो है खास तौर पे जो के वकला का जो कत्ल हुआ है पिछले दिनों वकला का, वो तो कराची में हुआ है और भी उन्होंने दूसरे शहरों में भी पाकिस्तान के कोशिश की है कि शिया मुसलमानों को अलहदा करके उन्हें कत्ल किया जाए। जैसा आपने सुना होगा कि हंगू के इलाके में और कोहाट में वगैरह में जो बसों से उतार के जो लोगों को कत्ल किया गया, तो ये जो है सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जो ANP का मैं समझता हूँ नहीं है। इसमें और लोगों, कराची अगर तरक्की करेगा तो उससे और किस किस किन दुनिया के किन ममालिक का नुकसान हो सकता है, उन पर असर पड़ सकता है। इसमें हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कराची की आबादी इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ है। कराची की जो तरक्की है, कराची अगर तरक्की कर गया और एक जैसा कि पोटेंशियल है कराची में बहुत बड़ा शहर और मरकज बनने का उस इलाके में, उससे आप ये सोचिए कि किन और ममालिक के आपस में जो हमारे जो पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनमें किन पे एक तरह का मनफी असर किस पे पड़ सकता है। तो और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान को तो हम लोग कभी इससे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हर किस्म की साजिश में मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे शियों और सुन्नियों में झगड़ा कराने में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। इस ये मैं ये नहीं कहता कि हम लोग इसमें मतलब कि हमारे अपने लोग भी शामिल नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। तो ये अमरीका, यूरोप, खलीज और हिंदुस्तान, उसके साथ साथ हुकूमत, और फिर ये है कि जो जब जब इंतजार कराची में रहेगा उस वक्त रहेगा उस वक्त और भी अगर हुकूमत ऐसे काम कर रही होगी जिसपे जाहिर लोगों की कड़ी नजर पड़नी चाहिए, वो खुद इस परेशानी में मुब्तला रहेंगे, क्योंकि कराची जो है चूंकि मरकज है, यानी जैसा मैंने अर्ज किया तो उस पर भी नजर दूर रहेगी। तीसरी चीज ये है कि अब हम सुनते तो बहुत कुछ हैं कि सदर साहब ने भी, सदर ममलिकत ने भी इसका नोटिस लिया और इसने नोटिस लिया और उन्होंने हुक्म दिया कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव का कोई पुलिस को रेंजर्स को असर नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनका पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज़्यादा दबाव है पुलिस पे और रेंजर्स पे, इसकी वजह से भी पुलिस और रेंजर्स जो हैं इस इनको हालात को अपने काबू में नहीं करना चाह रहे। हद तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने इस पर कोई सही तरह से तवज्जो नहीं दी है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से हम कराची को का नुकसान हुआ तो पूरे मुल्क का नुकसान है और जो हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो जो हमारे दुश्मन हैं अंदरूनी और बैरूनी दोनों, उनका प्लान यही है कि हम इसी तरह से ये चलता रहे ताकि जो और जो साजिशें और जो जो चल रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ के पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए और जो खासतौर पर जो शिमाली इलाकों में जो हो रहा है उससे हमारे नजर हट सके, और जो नेटो वाले कर रहे हैं, जो अमेरिकन जो कर रहे हैं उनसे तवज्जो हटी रहा है, और हम लोग जो हैं जो लोग हैं वो इस कराची के झगड़ों में मुलविस रहें ताकि उनकी अपने जो 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 भी जो 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 प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहें, उनमें किसी किस्म की वो रुकावट ना पैदा हो सके। क्योंकि जाहिर है कि ये जो सबसे बड़ा फाइनेंस और कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो 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 इनपुट है पाकिस्तान को, तो वो तो कराची से ही मिलता है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। यावर बुखारी साहब, भाई कराची में बदमनी और तशद्दुद ये कोई नई बात तो नहीं है, और ये एक दो साल की बात भी नहीं है, ये कम से कम दो अशरे से तो इसमें शिद्दत है, और इससे पहले से वहां पर बदमनी पाई जाती रही है। मसला क्या है कराची का, असल बुनियादी मसला क्या है?
जी, कराची का जो बुनियादी मसला है वो सिर्फ वहाँ शहर का नज़्म व नस्क जो है, वहाँ पर ताकत जो है वो उसका मरकज व महवर जो है वो अपने हाथ में रखने का, ये एक वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मेन जो मतमा नज़र है वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान है। अच्छा, अब इसकी आपने जैसा कि बताया कि दो अशरों से ये वहाँ पर ये हालात ख़राब हैं, आप ये देखें कि इसकी सबसे बड़ी वजह मैं जो करार दूंगा वो पूरे पाकिस्तान में इन दो अशरों में नज़्म व नस्क जो है उसकी बदतरीन सूरत हाल को करार दूंगा, क्योंकि इन दो अशरों के दरमियान ना तो हर जो अगर आमरियत आई तो आमरियत ने MQM को अपने साथ इक्तदार में रखा, और MQM को अपने साथ इक्तदार में रखने के बावजूद कराची में जो है वो अमन कायम नहीं किया जा सका। इसी तरीके से जो पहले जो 90 के अशरे में जो हुकूमतें आईं, दो दो ढाई ढाई साल की चार हुकूमतें जो आईं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी जमात है उनकी दो हुकूमतें आईं, दो हुकूमतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आईं, उन्होंने भी MQM को अपने साथ रखने की कोशिश की, अगरचे नवाज शरीफ ने वहाँ पर जो है ऑपरेशन करने की कोशिश की। तो सूरत हाल असल दर हकीकत ये है कि अगर मुल्की एजेंसियां अगर इस तरफ तवज्जो नहीं देंगी, और इसी तरीके से अगर ग्रुप्स जो हैं मुसल्ला होकर शहरों पर कब्जा करते रहेंगे और उसको लसानियत या उसको सूबाइत के तहत वो ग्रुप्स जो हैं वो सरवाइव करते रहेंगे, तो ये कभी भी निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता, बल्कि ये आग आगे तक फैलेगी, ये सिर्फ कराची तक नहीं रहेगी, फिर ये आग जो है पूरे मुल्क में जाएगी और ये पूरे मुल्क तक रहेगी। आप ये देखें कि MQM जो है उसको अगरचे अवामी हिमायत हासिल है, लेकिन जो उनके बारे में शकूक व शुभात हैं, जो तहफ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि उन्होंने उनके वहाँ भी कोई मुसल्ला लोग हैं जो शहरियों को एक किस्म का यकबाल बना लेते हैं और उनको असले के जोर पर उनको काबू रखते हैं। ये एक परसेप्शन है, ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई डिसीजन होगा या कोई फैसला है, ये एक परसेप्शन उनके बारे में ये है कि कराची में उनके जो है मुसल्ला लोग हैं जो असले के जोर पर जिन्होंने पूरे कराची के अवाम को जो है वो लसानियत का एक नारा तो है, जुबान का नारा तो है, लेकिन इसमें उन वो मुसल्ला लोग हैं। नवाज शरीफ ने जब कोशिश की उनके खिलाफ ऑपरेशन करने की, वो कामयाब ना हो उसका, क्योंकि इसके बारे में भी कहा जाता है कि उनके पीछे कुछ कुव्वतें हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, जो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस हकीकत से भी नज़रअंदाज इस हकीकत से भी नज़रें नहीं चुराई जा सकती कि MQM को नो डाउट अवाम की हिमायत भी हासिल है। जब वो ऐलान करते हैं, उनका जो लीडर हैं वो अल्ताफ हुसैन, वो लंदन में गुज़श्ता 20 साल से लंदन में बैठे हैं और लंदन में बैठकर वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, इसका एक एनालिसिस करना होगा पूरे जो हुकूमत है और पॉलिटिकल पार्टीज को कि क्या इस तरीके से एक आदमी बाहर बैठकर एक इतनी बड़ी पार्टी को चला रहा है जिससे कराची का पूरा जो उसे कुव्वत हासिल करने की जो एक पॉलिसी है और वहाँ पर अपनी अजारादारी कायम रखने के लिए दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। आप देखें कि अब हुकूमतें जो हैं वो भी उनके हाथों मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कराची पाकिस्तान का मुआशी जो है रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान की मईशत में कराची की हैसियत रीढ़ की हड्डी की तरह है कि 60-70% का रेवेन्यू जो है वो कराची से आता है, तो कोई भी हुकूमत वहाँ की मेजर फोर्स MQM है उसको नाराज नहीं करती। तो ये सारा कुछ देखना है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये अपने आप को रिविजिट करती हैं, क्या कराची, और एक साजिश ये भी चली हुई थी कि कराची जो है अलग सूबा बनना चाह रहा है, कराची से जो है ये सक्खर और हैदराबाद ये मिला के सिंध में सिंध के हिस्से बकरे किए जा रहे हैं। और आप देखें कि अभी ये जो सूबों के नारे लगे थे, यहाँ जनूबी पंजाब का सूबा और ये पोठवार का सूबा, ये हज़ारा सूबा जो है इसके बात चली थी, तो इसमें एमकेएम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि क्योंकि उसके पसे पर्दा कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, मुबसरीन ये कह रहे हैं कि एमकेएम की ये ख्वाहिश हो सकती है कि अगर ये सूबे बनते हैं तो कल को फिर वो नारा दे सकते हैं कि जी ये हमें सिंध से अलग किया जाए, अरबन सिंह जो है वो अलग हो और जो रूरल सिंध है वो अलग हो, तो सिंध का भी हिस्से बकरे किए जाए। कराची के आवाम नहीं चाहते हैं, अंदरूनी सिंध के लोगों के साथ मिलकर रहना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी साजिशें जो हैं, जब तक मुल्क में बेहतर नज्म व नस्क नहीं होगा, जब तक वहां के जो लोग हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा और हकीकत पर मबनी पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएंगी, तो ये वहां पर अमन कायम नहीं किया जा सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने यह भी जो इजलास उनकी जेर सदारत कल हुआ, उसमें उन्होंने ये हुक्म दे दिया है कि कराची और बलोचिस्तान के जो सरहद है उसके ऊपर जो है खारदार तारे लगाकर उसको सील कर दिया जाए। ये किस तरीके से मुमकिन है? क्या आप कराची और बलोचिस्तान के दरमियान ये एक नफरत की दीवार पैदा करना चाहते हैं कि वो खारदार तारे लगाकर उसको सील कर दें? और उनका ये कहना है कि दहशतगर्द ये कर रहे हैं, दहशतगर्द बाहर से कहीं से नहीं आ रहे, बलोचिस्तान तो अपने मसाइल में, बलोचिस्तान के अंदर जो है वो एक अपना एक इशू है जो वहां के लोग कर रहे हैं, कराची के अंदर एक अलग इशू है, कराची के इशू को बलोचिस्तान के इशू के साथ नहीं मिलाया जा सकता, बलोचिस्तान से दहशतगर्द। और ये जान छुड़ाई नहीं जा सकती कि आप ये कह दें कि दहशतगर्द कर रहे हैं, दहशतगर्द नहीं कर रहे हैं, वह पोलिटिकल मामला है, मुआशरती मामला है, इमरानियाती मामला है। ये जब तक मुआशरा ये नहीं सोचेगा के मामलात को दुरुस्त किया जाए, जब तक वहां के लोग जो हैं वो नहीं सोचेंगे कि ये कराची के मामलात को दुरुस्त किए जाएं, और जब तक हुकूमत और हकूमती अदारे इखलास के साथ ये नहीं सोचेंगे कि हमने कराची के मामले को दुरुस्त करना है, और उन अदारों
बहुत शुक्रिया
में मैं ये भी लूंगा कि पाकिस्तान की फौज भी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी, जब तक वो ये नहीं सोचेंगी कि कराची के मामले को किस अंदाज में कराची के अवाम को शामिल करके हल किया जा रहा है, कराची का मसला हल नहीं होगा। और ये आइंदा इंतखाबात तक, मैं ये समझता हूं कि ये आइंदा इंतखाबात तक मजीद वहां पर ये खून खराबा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। और गोया की टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबता बरकरार हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ताहिर मशदी साहब से, ताहिर शमीम अख्तर साहब से राबता बरकरार हुआ, ताहिर मशदी साहब से राबता बरकरार नहीं हुआ है। शमीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, फरमाइए
जनाब, क्या सूरत हाल है कराची की इस वक्त?
इस वक्त तो कराची हज़्म मामूल एक हफ्ते की तशद्दुद और खूनरेजी के बाद बज़ाहिर मामूल की तरफ रवा नजर आता है, लेकिन सत्य यह है कि यह गैर यकीनी हालात हैं। और आपने देखा होगा कि लियारी मैदान जंग बना हुआ है
जी,
और उसके असरात जो हैं वो सिंध से बाहर यानी बलूचिस्तान तक पहुंच रहे हैं, इस वजह से कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत पे शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है। बलूचिस्तान के एक वजीर ने खास तौर से एतराज किया है कि बलूचों के साथ ज्यादती की जा रही है, और जहां तक एएनपी का ताल्लुक है तो उसने भी अपने तहफुजात का इजहार किया है। उसने कहा कि जहां तक के कराची के हालात का ताल्लुक है तो उनके सुधार के लिए जरूरी है कि एक बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, जिसमें अव्वली तरजीह दी जानी चाहिए असलहे से पाक करना, पूरे शहर को असलहे से नाजायज असलहे से पाक करना। वो अमल जब तक के नहीं शुरू किया जाता और एनपी के नजदीक ये अमल गैर जानबदारी और मौसर तरीके से सिर्फ फौज अंजाम दे सकती है, लेकिन सिविल हुकूमत इस पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है और वो सिर्फ आखिरी तरीके से वक्ती तौर पे हालात को काबू में करने को समझती है कि यही असल मसले का हल है, लेकिन ऐसा है नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब। डॉक्टर मखसूस सिद्दीकी साहब,
صدیقی صاحب
جی،
پاکستان کے بعض کالم نویسوں نے کراچی کے بارے میں جو کالم لکھے ہیں اس میں انہوں نے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کراچی میں جو موجودہ بدامنی ہے، جو تشدد ہے، جو افراتفری پائی جاتی ہے، اس کی داغ بیل جنرل ایوب نے ڈالی، ضیاء الحق نے اس کو بڑھاوا دیا، پرویز مشرف نے اس کو اوج تک پہنچایا. میرا سوال یہ ہے کہ عامروں نے اگر کراچی کو بدامنی کے حوالے کرنے کی کوشش کی، کراچی میں بدامنی کے اسباب فراہم کیے، تو جمہوری حکومتوں نے کیا کیا ہے؟ جمہوری حکومتوں کا کردار کیا رہا ہے کراچی کے تعلق سے؟
یہ جو آپ نے پائے
جی
جی جی جی جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح تھا کہ یہ ایوب خان کے زمانے میں، اس میں تو سب کو علم ہے کہ ایک تو انہوں نے خاص طور پہ یعنی ان کی پالیسی یہ تھی کہ کراچی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، اور جو اے این پی کی جو سے سمجھ لیں اے این پی والوں کا اور کراچی کے لوگوں کا جو جھگڑا شروع ہوا تھا اس کی جو تھی بنیاد وہ بھی ایوب خان کے زمانے میں پڑی تھی. اس کے بعد جو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایس آئی نے خاص طور پر ضیاء الحق کے زمانے میں جو ایم کیو ایم کو پروان چڑھایا اور ایم کیو ایم اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1980s میں جو بھی بہت بڑی خوریزی ہوئی کراچی میں، اور وہ جو اے این پی کے سپورٹرز تھے اور کراچی کے جو شہری تھے، اور اس میں وہ بشرا زیدی کا کیس بھی تھا، تو اس سلسلے میں تو وہ بہت یعنی کئی سال تک کراچی جو تھا وہ جلتا رہا اور بڑے بڑے کرفیو نافذ ہوتے رہے. تو اور اب اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اصل میں ضیاء الحق کا تو یہ تھا کہ انہوں نے جو ایم کیو ایم کو جو پروان چڑھایا اس وجہ سے کہ تاکہ کراچی میں جھگڑے چلتے رہیں اور جو ان کی جو اپنی پالیسیز تھیں جس طرح سے وہ امریکہ کی حمایت کر رہے تھے اور اس کے اوپر سے لوگوں کی نظریں ہٹی رہیں. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا مضبوط ہونا ضروری ہے کیونکہ کراچی کے لوگوں کا جو حقوق ہیں اس کا اور اے این پی کے، اور جو جیسے ابھی آپ نے سنا بخاری صاحب نے کہا تھا کہ سندھی لوگ بھی وہاں جمع ہیں اور پٹھان بھی ہیں اور یہ لوگ، تو ان کو ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. لیکن میں بخاری صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ وہ پولیٹیکل جو سپورٹ ہے اپنے گروپس کا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ہتھیار جو ناجائز طور پر کراچی میں آ گئے ہیں وہ یہ سب سے بڑی وجہ ہیں اس وقت جو کراچی میں جو سخت بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اور جو روزانہ درجنوں لوگ جو اپنی جو جان دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ کہ حکومت کو یہ چاہیے تھا. میرے نظر میں تو یہ ہے کہ فوج سے کہتے کہ بڑا ایکشن لے کراچی میں، اور جتنے بھی وہاں پہ لیگل اسلحے ہیں ان سے لوگوں سے وہ لے لیں، اور صرف فوج یہ کر سکتی ہے کیونکہ جو میرا تجربہ ہے کہ رینجر بھی اس میں ناکامیاب ہو چکے ہیں اور پولیس کا تو سوال ہی نہیں ہے، پولیس تو اس چیز میں بالکل شامل ہی نہیں ہونا چاہتی. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بدقسمتی سے ایوب خان نے شروع کیا ضیاء الحق کے زمانے میں، اور پرویز مشرف کے زمانے میں بھی یہ تینوں جو بڑی بڑی جو لمبی جو ملٹری گورنمنٹس رہی ہیں اس میں اس طرح کا یہ جو تھا انہوں نے آپس میں لوگوں کو ایک طرح سے لڑوا کے جھگڑا فساد پیدا کر کے کراچی میں بحران کر کے، اور اس سے یہ ہوا کہ اپنی ایک طرح کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسموک اسکرین، یعنی وہ دھوئیں وہ وہاں اس کھڑا کر دیا تاکہ ان کے جو کارنامے تھے اس پہ اس سے لوگوں پہ اس سے نظر ہٹی رہے. اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیڈر اور این پی کے لیڈر نہیں چاہتے کہ آپس میں یہ خوریزی ہو، جھگڑا ہو. مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ان کو صحیح طرح سے کسی اچھی صدارت کے اندر میں ان کو بٹھایا جائے اور گفتگو کی جائے تو کراچی کے میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ فوج اپنا پورا ایکشن لے اور جو بھی غیر قانونی ہتھیار جس کے پاس ہیں وہ ان سے چھینے. یہ اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کراچی میں امن قائم ضرور ہو جائے گا. اور یہ کہ کوئی بھی ابھی میں کافی عرصہ وہاں پہ گزار کے آیا ہوں خود، اور میں نے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہر گروپ کے لوگوں سے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس قسم کی خونریزی ہو. اور एक ग्रुप जरूर है जो जो जिसको मैं कहता हूँ प्रोफेशनल जो वो हैं ट्रबल मेकर्स, या जो जो क्या कहना चाहिए, जिनका काम सिर्फ यही है कि जो बसों में और ट्रेनों में और गाड़ियों में और घरों में और दुकानों में आग लगाएं, इन ये प्रोफेशन, इनको यकीन मानिए इनका किसी ग्रुप और पार्टी से ताल्लुक नहीं है। इनका काम ये है कि बंदशार फैलाना, शर वाले लोग हैं, इनको इनकी अलग से पकड़ के इनकी पिटाई होनी चाहिए। इनका मेरे नज़र में इनका किसी ग्रुप से किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो ये अगर हुकूमत चाहे तो ये हुकूमत को इस्लामाबाद को ये एक तरह का कहना चाहिए, ये स्टेप ये कदम उठाना पड़ेगा कि सख्ती और मैं मेरी नज़र में तो अब ज़रूरी ही हो गया है कि फ़ौज का आना कराची में, कि फ़ौज को भेज के अमन अमान कायम करें। लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये है कि उसके बावजूद कराची में इन्वेस्टमेंट अभी भी हो रहा है और लोग अभी भी, जैसे कहना चाहिए कि बिजनेसेस भी बढ़ रही हैं और फैक्ट्रियां भी लग रही हैं और लोगों को मुलाजमत भी मिल रही है और सब कुछ हो रहा है। और वो भी जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जो बैरूनी, अब इसमें बैरूनी जो भी क्या कहना चाहिए पावर्स आ जाती हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि भाई इसके बावजूद सब कुछ होने के बावजूद कराची में अभी भी जो है वो तरक्की भी हो रही है और जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आइंदा हालात बेहतर होंगे। लेकिन ज़रूरी है मरकजी हुकूमत को कि इसमें ऐसा सख्त किस्म का कदम उठाए, आर्मी को इसको इस्तेमाल करें इस सिलसिले में, और जो जो पार्टीज जिनमें आपस में झगड़ा हो रहा है उनको 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 मेज पे बिठाएं, उनके साथ गुफ्तगू करें। और ये जो खास तौर पर जो जो टिट फॉर टैट किलिंग हो रही है कि 5 MQM के और 6 NPA के और 7 MQM के और 8 NPA, इस तरह से ये जो कत्लो गारत है ये हर हालात में रुकनी चाहिए। उसी वक्त ये रुक सकती है कि जब गैर कानूनी असलहे जो हैं वो लोगों से छीने जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब। जनाब, इससे पहले जब कराची में तशद्दुद की लहर आई हुई थी तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इस बात पर जोर दिया था कि कराची में कयाम अमन के लिए जरूरी है कि फौज यहां पर बुलाई जाए। मखसूस सिद्दीकी साहब की गुफ्तगु आपने मुलाहजा फरमाई होगी, इनका भी कहना यह है कि कराची के हालात काबू में लाने के लिए फौज का आना जरूरी है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
यहाँ मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत मखलूत हुकूमत में जो इत्तेहादी हैं और शरीक इक्तदार हैं, इन सबों में इस बात पे सियासी तौर पर मुफाहमत होनी चाहिए कि इनमें से हर एक व्यक्ति ये कहता है कि बिला इम्तियाज कार्रवाई की जानी चाहिए तमाम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ। लेकिन जब फौज की तैनाती का जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि फौज घर घर तलाशी लेके असलहे से पाक करेगी शहर को, तो उसमें इन्हीं इत्तेहादियों में इख्तलाफ आरा होती है। अब देखिए, कल आपने अगर टेलीविजन देखा हो तो कराची में जो लियारी में फसाद हो रहा था तो इसमें पुलिस गैर मुअस्सर नजर आ रही थी और मकानात से और छतों पे से रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए जा रहे थे, हैंड ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और दूर मार की राइफलें इस्तेमाल की जा रही थी। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब है कि इस असलहे का अंबार कराची में था जब ही तो लियारी पहुंच गया। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ लियारी में असलहे का अंबार है, बल्कि पूरे शहर के अंदर और इस असलहे के फैलाव का सबसे बड़ा सबब वो कंटेनर हैं और वो ट्रक हैं जो अफगानिस्तान पर काबिज अमरीकी फौज को असलाह की फराहमी करते हैं और पूरे इस इलाके से दंडराते हुए गुजरते हैं। बहुत से कंटेनर गायब भी हुए, अगवा भी किए गए और यूं भी कौन जाने कि इन कंटेनरों के असलाहजात रास्ते में किस किस को तकसीम किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा एक सबब यह भी है कि न सिर्फ ये कि घरों में आप तलाशी लें, एक मतलब आपने तलाशी ली, असलहे से आपने पाक कर दिया पूरे शहर को, लेकिन जब तक कि असलहे की तरसील नहीं रोकी जाएगी और वो कराची के बाहर से आती है, क्योंकि कराची में असलहा नहीं बनता, असलहा बनता है कहीं और या असलहा बाहर से स्मगल होता है, فرانسیس حکومت سندھ نے بلوچستان اور سندھ کی سرحد پہ ناکابندی کر دی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور ہسلا اسی راستے سے آتے ہیں. تو جب تک کہ آپ استحے کے ذرائع کو, اس منبع کو نہیں روکیں گے, محض تلاشی لینے سے وقتی طور پہ امن امان تو ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں اس رائے سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ صاحب یہ عامروں کا کیا ذرا ہے. جناب جی, جب ون یونٹ بنا تو اس کو تو سویلین حکومت تھی نا, غلام محمد کے زمانے میں ون یونٹ بنا ہے
جی.
اور اس ون یونٹ میں چھوٹے صوبوں میں پنجاب کے خلاف نفرت پیدا ہوئی, اور اسی سلسلے میں چونکہ اردو بولنے والے آبادکار یہاں پہ ون یونٹ کے حق میں تھے, اس وجہ سے اس مسئلے نے ایک لسانی سے اختیار کر لی. اب آپ ملاحظہ کریں کہ بھٹو کے دور کو تو آپ فوجی امریت کے دور نہیں کہیں گے, انہیں کے زمانے میں سندھیوں اور اردو بولنے والوں میں بڑے خونریز فسادات ہوئے. اس سے پہلے تاریخ بتائے گی کہ سندھیوں اور مہاجروں میں ملازمتوں کے لیے اور مواقع کے لیے رقابت تو ہوگی, وہ تو ہر طبقے میں ہوتی ہے, لیکن نفرت کس طرح سے پھوٹ کے سڑکوں پہ نہیں نکلی تھی. جیسا کہ دیکھنے میں آیا, اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور بہت سے بے گھر ہوئے, نقل مکانی تو مجبور ہو گئے, سندھی بھی اور اردو بولنے والے بھی. تو یہ اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, بنگال پاکستان کا حصہ تھا تو وہاں تو آپ کی سویلین حکومت تھی مارشل لا لگنے سے پہلے. بنگالیوں کے اور بہاریوں کے درمیان جو نفرت پھیلی, اور جو بنگالی یہاں آباد تھے ان کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا, وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو یہاں رہ چکے ہیں اس دور میں. اس وقت تو کوئی عامر نہیں تھا, کوئی فوجی حکومت نہیں تھی, اور اس کے علاوہ صرف اسے نسلی فساد پہ اکتفا کرنا کافی نہیں, یہاں تو فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں کراچی میں. کبھی فرقہ وارانہ فسادات آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں فرقہ واریت مذہبی انتہا پسندی اور بنیاد پرست کی انتہائی عروج پہ ہے, اس کا استحصال ہونا چاہیے اور اس کے لیے مدرسوں کی تشہیر ہونی چاہیے, اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. اور جب لسانی فسادات ہونے لگتے ہیں تو کبھی مہاجر پہ الزام لگایا جاتا ہے, کبھی پختونوں پہ لگایا جاتا ہے, کبھی سندھیوں پہ لگایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ملک میں صوبوں کو علاقائی خود مختاری نہیں ملی, جمہوریت کا عمل معطل ہو گیا, اور جو جمہوری حکومتیں تھیں وہ نام نہاد جمہوری تھی, اس میں میں بھٹو کی حکومت کو بھی شامل کرتا ہوں, کیونکہ اس نے بلوچستان اور صوبہ سرحد کی منتخب حکومتوں کا تختہ الٹ کے اور وہاں پہ اس نے اپنے پسند کی حکومت قائم کی, اور بلوچستان میں فوجی کارروائی بھٹو کے زمانے میں شروع ہوئی, اس سے نفرتیں بڑھی, لسانی اور علاقائی تعصب, یہاں تک کہ اب وہ علیحدگی پسندی پہ مندرج ہو رہی ہیں. تو سب کا علاج میں سمجھتا ہوں ایک بے لاج جمہوری اور سیاسی عمل میں مضمر ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ پروفیسر شمیم اختر صاحب یا اور بخاری صاحب. جناب ہمارے پاس 3 منٹ کا وقت رہ گیا ہے, کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے حکومتیں آپ کو کتنی سنجیدہ نظر آئی ہیں, خود موجودہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے؟
مجھے تو کوئی بھی حکومت سنجیدہ نظر نہیں آئی اب تک. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کراچی کے مسئلے کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے کراچی کے مسئلے کو استعمال کیا. جہاں تک آمریتوں کا تعلق ہے, انہوں نے بھی کراچی کے جو عوام ہیں ان کو استعمال کیا اور کراچی کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو استعمال کیا. موجودہ حکومت بھی اسی روش پہ ہے. یہ کیسا ایک مذاق ہے قوم کے ساتھ کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی حکومت میں ہے اور متحدہ قومی موومنٹ بھی حکومت میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے, اور یہ تینوں بڑے جو فورسز کراچی میں, یہ تینوں بڑے پلیئر کراچی کے ہیں اور کراچی میں امن قائم نہیں کر سکتے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت آج تک سنجیدہ نہیں نظر آئی, جس نے کراچی کے حالات کو سدھارنے کے لیے بات کی ہو. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو میں اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ فوج کسی بھی جگہ پہ مسئلہ حل کر سکتی ہے. مسئلہ صرف اور صرف عوام حل کر سکتے ہیں. مسئلہ آپ یہ دیکھیں, جنرل نصیر اللہ بابر نے فوج کشی کی تھی نا کراچی پہ, تو کیا ہوا, انہوں نے گھر گھر جو ہے وہ کیا تھا, آپریشن کیا تھا گھر گھر اسلحے سے پاک, وہ لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. اب بھی اگر فوج جائے گی تو لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے, اور جو بھی حکومت آئے گی وہ کراچی کے مسئلے کو, کراچی کے جو پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کریں گے. اس کے لیے صرف وہاں کے عوام جو ہیں وہی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جو شمیم اختر صاحب نے جو آخر میں جو بات کی کہ سیاسی عمل جو ہے اسی کے ذریعے وہاں کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو کم از کم حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, کراچی کے عوام کو باہم ایک عمرانی معاہدہ کرنا چاہیے اور معاشرت کے لیے اصول وضع کرنے چاہیے کہ ہم کس انداز میں کراچی کے عوام جو ہیں یہ اپنے یہاں ہم رہ سکتے ہیں اور معاشرے کو قائم کر سکتے ہیں. کوئی فوجی جو ہے فوج کشی یا آمریت یا فوج یہ کراچی کے مسئلے کا حل نہیں ہے. صرف عوام ہی کراچی کے مسئلے کو حل کر سکتی ہیں. وہ اپنی پولیٹیکل فورسز جو اپنے پولیٹیکل رہنماؤں کو وہ عوام دباؤ ڈالیں کہ آپ جو ہیں یہ کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گفت و شنید کے دروازے کھولیں.
بہت بہت شکریہ
بخاری. نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور سنی تحریک, یہ سب لوگ جو ہیں یہ آپس میں باہم بیٹھ کر ایک عمرانی معاہدہ کریں. عمرانی معاہدے کے تحت اسلحے سے پاک کریں کراچی کو, تب جا کے کراچی کا مسئلہ حل ہوگا.
بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر مقصود صدیقی کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال کراچی کے جو موجودہ لہر ہے بدمنی کی, اس کے بارے میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں شامل تینوں بڑی جماعتوں کا نام لیا جا رہا ہے. بہرحال اس میں دورائے نہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سیاسی عزم و ارادے کی زیادہ ضرورت ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.